发财好。
معاف کر دیا پروردگار عالم نے کہا اسے معاف کرو، یوسف اقتدار میں آ گئے، تو یوسف نے کہا
جب تم مجھے دیکھ کے ایسی بے قرار ہو گئی تو اگر تم نے آخری رسول کو دیکھا ہوتا تو تمہارا کیا عالم ہوتا. جیسے ہی یہ کہا زلیخا نے کہا میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. یعنی جس کی شان یہ ہو کہ لوگ بغیر دیکھے ہوئے محبت کرے وہ کیسا ہوگا. مگر اب میں آ کے پوچھتا ہوں آپ ہیں, آپ کی ایک صورت ہے, میں صورت کی تعریف کروں. اس صورت میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا, بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے. آنکھ جیسی چاہیے اگر چھوٹی بنانا تھی قدرت نے تو آپ کی آنکھیں چھوٹی بنا دی, بڑی بنانا ہوئی بڑی بڑی بنا دی. یہ تو جو بنایا ہے قدرت نے, اپنے محبوب کی آنکھیں بنائی تو حسین بنائی, اس کے دانت بنائے تو حسین بنائے, اس میں اس کا دخل نہیں ہے. سیرت میں اس کا دخل ہوتا ہے, کردار میں اس کا دخل ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے ہمارے یہاں محفلوں میں اکثر سورت النبی پڑھی جاتی ہے. حضور کی آنکھیں ایسی, حضور کے بال ایسے, سورت النبی بھی قابل تعریف ہے, مگر سورت کے مقابلے میں سیرت النبی کا درجہ کہیں بلند ہے. سیرت النبی کا درجہ شجاعت علی ابن ابی طالب کا بیان کثرت سے ہوتا ہے مجلسوں میں, سب ہوتا ہے. بھائی حضور نے جنگ نہیں کی تو اس کا بیان نہیں ہوتا, اور حضور کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جب علی جیسا بھائی موجود تھا. دلیل میں دے رہا ہوں, حسین نے بھی تب تک جنگ نہیں کی جب تک عباس شہید نہیں ہو گئے. جنگ حسین تب ملتی ہے جب شہادت عباس ہو چکی, یہ شان ہوتی ہے. تو جنگ نہیں کی حضور نے, اگر نہیں کی تو کوئی بات نہیں, مگر علی جیسے شجاع کا تذکرہ ہوا. اس نے کہا میدان جہاد میں ہم لوگ طاقت استقامت اور سب حاصل کرنے کے لیے رسول کے پاس آتے تھے. جہاں علی کو استقامت ملے وہ کیسا شجاع ہوگا, تو یہ علی کا تذکرہ نہیں ہوگا, شاگرد کے تذکرے سے اپنے آپ استاد کی شجاعت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. نبی میں کہیں ہے ہی نہیں. اچھا رسول خود نہیں چاہتے کہ میرا تذکرہ ہو اکیلے. دیکھیں میں شیعہ میں شیعہ حوالہ نہیں دے رہا ہوں اس وقت, برادران اہل سنت کے یہاں درود بھیجنے کے جو طریقے رسول اللہ سے روایت کیے گئے ہیں وہ 50 ہے, 50 طرح کے درود ہیں. ان میں 47 درود وہ ہیں جس میں پیغمبر کے ساتھ ان کی آل شامل ہے. نہیں میجورٹی تو ہو گئی نا, اب بتائیے 47 کو لے کے 3 کو لے. اب صاحبان نظر بیٹھے, میں کہتا ہوں چلیے یہ تو ضرور ہے, آپ جو اسے بھی بھیج دیجیے, آل پر نہیں بھیجا آپ نے مان لیجیے, لیکن نماز میں نہ بھیجا جائے. نماز پڑھی جائے اور تشہد میں پیغمبر کے تشہد پڑھنے کے بعد سنی شیعہ ہر مکتب میں اگر رسول اللہ کا درود بھیجا جائے اور ان کی آل پر نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور دلیل میں دے رہا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے, اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اگر نماز میں تم پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے, یہ تو ایک تھی. رسول اللہ کی حدیث موجود ہے ہمارے برادران اہل سنت کیا ہے, اور جب ہم کیا کہیں کہ ہم انہیں دکھائیں, کیا وہ جانتی نہیں, کیا جاہل جوڑوں, ایسی بات میں کہوں میں دکھا دوں گا, میں چونکہ ضرورت بھی نہیں کرتا. وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اوپر تم کٹی سلوات کا بھیجنا, दुम बुरीदा सलवात न भेजना, किसी जानवर की दुम काट दीजिए क्या सूरत निकल जाएगी, आदमी की नाक काट दीजिए जानवर की दुम बात बराबर। तुम कटी सलवार का बेचना, सहाबा इकराम ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की या रसूलल्लाह तुम कटी सलवार कौन होती, कहा जहां मेरे ऊपर सलवार भेजी जाए मेरी आल को शामिल न किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अहले बैत की मंजिल वो है, इसीलिए जब सीरत रसूल पढ़ी जाए तो बगैर अहले बैत के मुकम्मल ही नहीं होगी। जब भी सीरत का कोई बाप खोलेंगे तो अहले बैत उसके अंदर अपने आप शामिल होने लगे, उनके साथ आएंगे, इसलिए वो अलग से कोई सीरत नहीं है। मैं बताइए मैं रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ू कि ना पढ़ू, कि भाई मैं जा रहा रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ आयत अजीर के नाजिल होने के बाद कि वो जाए और उसके बाद सलाम करे, तो ये सलाम पैगंबर अपनी तरफ से करते थे कि हुक्म खुदा की तरफ से करते थे महीनों, और ये कह के सलाम करें कि अहले बैत रिसालत तुम पर सलाम हो। ये बताइए सीरत पैगंबर पढ़ू तो ये बताऊं कि ना बताऊं कि जब फातिमा जहरा आती थी तो रसूल खड़े हो जाते थे, कोई अली के आने पर नहीं खड़े होते थे, हसन के आने पर नहीं खड़े होते थे, फातिमा जहरा जब आती थी तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, उसके बाद उस जगह पर बिठलाते थे जो उनकी अपनी जगह होती थी, तब तक उस जगह पर नहीं बैठते थे। क्या बगैर फजाइल फातिमा के सीरत नबी मुकम्मल हो जाएगी? सीरत नबी पढ़ू तो बगैर उसके पर्दों के लवासों को कांधे पर सवार किया, आप बताइए कांधों पर सवार और कब सवार किया, जब नवासों ने ये फरमाया कि नाना सबके पास सवारी मौजूद है और हमारे पास सवारी नहीं, तो रसूलुल्लाह के पास खुद उनका अपना नाला ही था, कहते तुम हमारी ऊँटनी पर बैठो, और उनके पास सवारी क्यों नहीं थी, उनके बाप के पास सवारी मौजूद थी। अच्छा उनके पास नहीं थी, सहाबा इकराम के पास न जाने कितनी सवारियां थी, लाइन लग जाती ऊँटों की बैठो, ये सवारी नहीं है तो रसूलुल्लाह ने कहा मेरे कांधे पर बैठ जाओ। कांधे पर बैठने के बाद भी अब शहजादों ने, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीरत नबी का वजूद है कि सारी दुनिया तारुफ में देख ले कि ये बच्चे नहीं है बल्कि रसूल के वो कारकुन है जो रसूल के न होने पर दीन की हिफाजत करेंगे। पैगंबर बिला वजह किसी को अपने कंधे पर नहीं चढ़ा सकता। आप बताइए आपके मुल्क में प्रेसिडेंट है, आपके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर है, अपने बच्चों को कंधे पर चढ़ा के पार्लियामेंट लाएंगे, सेनेट में लाएंगे, हुजूर ईद की नमाज में जा रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी पर जा रहे हैं, मेला घुमाने नहीं निकले हैं, सरकारी ड्यूटी पर रसूलुल्लाह निकले हैं, और जब सरकारी ड्यूटी पर पैगंबर निकल रहा है तो उसको उसी तरह से उसी शान से जाना चाहिए, किसी के हवाले कर दे रहे मेरे कहने में बैठे कंधे पर बैठा है। अब बच्चों में भी सारी सूरत वाजे हो जाए, एक बार इरशाद फरमाया इबादत सबके सवारियों की मिहार तो उनके हाथ में, आपने अपनी आप देखे वाकत में जुल्फों की बेपनाह तारीफ होती, हुजूर की जुल्फ कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, कोई कर सकता है हुजूर की जुल्फ का मुकाबला, मगर जब जुल्फ का मुकाबला नहीं होता हो सकता तो उन हाथों का भी नहीं हो सकता जिन हाथों में रसूलुल्लाह जुल्फे दे दे। इन हाथों कोई मामूली चीज है, पैगंबर की जुल्फ किसी के हाथ में, एक हसन के हाथ में दे दीजिए, हुसैन के हाथ में, ये बताइए ऐसी कोई सवारी देखी, मैंने तो आज तक ऐसी कार भी नहीं देखी कि स्टीयरिंग दो आदमियों के हाथ में हो। सिखाने के वक्त होती है वो, जो सिखाने वाली गाड़ियां होती हैं उसमें होता है कि ये कुछ चीजें कुछ गलती करे तो मैं संभाल लूंगा, मगर जब दो बराबर के सवार हो जिनमें गलती का इम्कान न हो तो जुल्फे देनी। ये बताइए कि अगर एक मिहार पकड़ के कहे दाहिने चलिए और दूसरा मिहार पकड़ के कहे बाएं चलिए तो सवारी की भर जाएगी। या रसूलल्लाह जब आपने अपनी जुल्फे दोनों के हवाले कर दी है ये खतरा है, पैगंबर कहेंगे मैंने मासूम के हवाले की है गैर मासूम के नहीं, और एक से हालात में दो मासूमों में इख्तलाफ नहीं होता, जो हसन चाहेगा वही हुसैन चाहेगा। सवारी जा रही, आप देखते रहते सीरत रसूल लगी, देख लीजिए सीरत रसूल पढ़िए अंदाजा हो जाए। तो सब देख रहे यार रसूल ना करे, बहुतों ने कहा साथियों ने हवाई पर हम सवार करवा ले। उसके बाद किसी साथी ने अक्सर होता है हम भी जाते हैं दूसरों के यहाँ बच्चों की तारीफ करते हैं, भाई तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। देखिएगा साहबी ने बहुत अच्छी बात कही कि हसनैन हसन हुसैन आपकी सवारी कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कहा आपकी सवारी कितनी अच्छी है। रसूलुल्लाह को इस पर कुछ न कहते तो भी बात सही थी। हुजूर ने कहा और तुमने ये नहीं देखा कि सवार कितने अच्छे हैं। हुजूर को यह बात गवारा नहीं हुई, जैसी सवारी है वैसे ही सवार है। सवारी देख रहे हो, सवारों को नहीं देख रहे कितने अच्छे सवार है। ये हैसियत पैगंबर की अगर पढ़ी जाए तो क्या अंदाजा हो रहा है। अब शहजादों ने क्या बात कही, नाना सब की सवारी तो बोल रही है, आवाज दे रही है, हमारी सवारी खामोश है। तो रसूलुल्लाह कुछ भी कह सकते थे। पैगंबर ने क्या कहा, अल्लाह को माफी, अल्लाह से माफी मांगी। और कहा यह जाता है कि अफ्व की आवाज कुछ ऐसी है जैसे ऊंट या जानवर निकालता है। अब रसूलुल्लाह बेमानी आवाज को नहीं निकाल सकते थे, बेमानी आवाज तो पैगंबर से नहीं, आवाज वो निकाली कि सवारी की आवाज भी हो जाए और बारगाह अहदियत में बंदगी का इजहार भी। अल्लाह को जैसे ही आपने कहा अलग, हुजूर कितनी मरतबा अलग हो कहते थे, जिनके लिए नमाज शब वाजिब थी वो 300 बार तो रोज ही कहते थे मिनिमम, कम से कम नवरात में खड़े होकर 300 बार अलग हो कहते थे। कभी जिब्राइल नहीं आया, हुजूर ने दो मरतबा कहा, तीसरी बार नहीं कहा। दो बार कहा, जिब्रील ने आके कहा अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है, फरमा रहा है कि तीसरी मरतबा न कहे वरना परवरदिगार आलम जहन्नम की आग को ठंडा कर देगा। रहमत इलाही जोश में है, जहन्नम ठंडी हो जाएगी तो जालिमों को सजा कहाँ मिलेगी। इसलिए अब इस मौके पर मैं कहता हूँ रसूल 300 मरतबा अलग को कहते हैं बारगाह आदियत में, मगर अगर दोनों शहजादे रसूल के साथ शरीक हो जाए तो दो बार की शान जहन्नम को ठंडा कर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात ऐसी है कि यहाँ मुसलमानों में नहीं गैर मुस्लिमों में भी इख्तलाफ नहीं हो सकता, इसलिए कि हुसैन मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, हुसैन इंसानों के रहनुमा है। जो साहब ने कहा भी है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो मालूम होगा कि ये है। यहाँ जब मैं आता हूँ मुझे बड़ी मशा, एक तरफ मैं बड़ा खुश होता हूँ पॉजिटिव पहलू, इतना ऑर्गेनाइज देखता हूँ आप लोगों को और इतना इस तरह से माशाल्लाह अच्छा लगता हुआ मजमा निकलता हूँ, सबको दुआएं देता हूँ। अच्छा एक बात कह दूँ, वो आगा साहब ने जितनी बातें कही थी और जितना शुक्रिया अदा किया है और सबका, उसमें मुझको निकाल के बाकी सबका शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ, तो मेरी तरफ से भी मानते हैं। इसमें अर्ज करना था, लेकिन मैंने मेरे अजीज दोस्त बैठे हुए हैं भगवान नकवी साहब और ऐसे मसूर जाफरी साहब तशरीफ पर, मैं इनसे कहा था इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। कोई तो आदमी ने सोचे मेरा नहीं लिया, उनका नाम लिया, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ हवाले के लिए मैंने इनका नाम लिया। आपके सामने मेरी दोस्तों को हुई थी तो मैंने इनको बताया था, अभी उन्होंने ऐलान भी किया जायज थी, मेरा ताल्लुक जायज से है। मैं ये बता रहा हूँ कि वो बात है कि जहाँ इख्तलाफ का गुजर नहीं हो सकता, मेरा ताल्लुक जायज जायज या कस्बा है और उसकी आबादी रिजविया की आबादी की 1/4 या 1/6 हो, इसी रिजविया की आबादी की है, जो मुसलमानों से डोमिनेटेड है। मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे यहाँ कम से कम 70% होगी, अगर जब फेयर इलेक्शन होता है फ्री जिसमें सीट वीट रिजर्व नहीं करते तो मुस्लिम चेयरमैन होता है, तो यह है मशवरा। और आज से नहीं, मोहम्मद गौरी के वक्त से पता हुआ है, मीर इमादुद्दीन तिलची एक सैयद थे, उन्होंने पता किया था। सादात सुन्नी सादात भी है, शिया सादात भी है। मैंने शाह अली हसन जायसी का आपको हवाला दिया था, शाह अली हसन जायसी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े सूफी गुजरे, उनका बहुत बड़ा इमामबाड़ा है। आज इस वक्त उनका सालगिरह से पहले ही 8-8 बजे रख दिया जाता है। पूरी रात अकीदतमंद आते रहेंगे और नौहाखानी होती रहेगी। और सुबह जब जुलूस उनका 8-9 शिया जुलूस जो होता है वो 2-2.5 घंटे का होता है, वो फासे में न किसी से नाटक करते बनता है, 300-400-500 आदमी उनसे क्या उम्मीद की जाए कि वो 2 बजे जुलूस उठा करके बड़ा मातम कर लेंगे। बाकी में तो होता है मगर फाका चिकनी हो हमारे आशु, लेकिन जो बरादरा ने अहले सुन्नत का जुलूस है ये बराबर होता है तकरीबन 8-9 बजे सुबह और रात के 10 बजे तक चल जाएगा। राउंड इतना बड़ा राउंड करेगा, इसमें हिंदुओं के ताजिए बराबर से शरीफ होंगे। और ये बढ़ई का ताजिया है और ये लोहार का ताजिया है, ये सारे ताजिए भी आते रहेंगे, इसमें शामिल होंगे। वो दो सुन्नी अंजुमने हैं हमारे यहाँ, एक का नाम है मोहम्मदिया और एक का नाम है अहमदिया। यानी मानवियत में है कि अगर हुसैन का मातम हो तो जो रसूल से निस्बत रखता है वो हुसैन का मातम करे। और ये अंजुमन सब लोहे भी पड़ती है, मैं इसका पूरा सबूत दे सकता हूँ, इसका यूट्यूब पर पड़ा भी हुआ है, वो आप चाहे देख भी सकते हैं। उसके अंदर मातम होता रहता है, मोहम्मदिया और अहमदिया दोनों मातम करती है बराबर से। अब ये सुबह से आप 12 घंटे का मातम करेंगी और जंजीर का भी करेंगी, अमा भी लगाएंगी, आग का मातम भी होगा। यानी आशूरा इस तरह मनाया जाता है, साल भर इंतजार होता है। और हमारे यहाँ के ये अहले सुन्नत दूर दूर से बम्बई में रहते हैं, पहुंचना है मुहर्रम, बम्बई में होता है मगर नहीं, वहां चल के मन्नते हैं आते हैं। यानी सबसे बड़ा जुलूस अहले सुन्नत का होता है, शियों का आशूर में नहीं होता। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये कहता हूँ अहले बैत में सुन्नी शिया इख्तलाफ नहीं है, जो अहले बैत की मुखालिफत करता है न सुन्नी है न शिया है। वो सिर्फ खारिजी हो सकता है, वो सुन्नी शिया नहीं हो सकता, इसलिए कि वहां मुखालिफत का कोई सवाल नहीं। दूसरा हवाला आपको देता हूँ, इलाहाबाद में जो सबसे बड़ा जुलूस उठेगा वो भी सुन्नी ही का होगा। उसका नाम है, उस काजिए का नाम है इलाहाबाद वाले, अगर यहाँ हो तो वो मेरी तस्दीक करेंगे, बुढ़ा काजिया। वो एक महिला है, उस महिले का नाम ही है बुढ़ा काजिया। साल के वो बुढ़े काजिए पर वो ये हुआ, बुढ़े काजिए तक जाएंगे रिक्शे वाले से, आप कहिए कि मैं बुढ़ा काजिया पहुंचा दो, पहुंचा देगा, आज की बात नहीं साल भर, क्योंकि वहां से वो काजिया उठता है। और वही इतना बड़ा काजिया होता है उठाने के लिए, और उसमें ऐसे लोग बांस बांधे जाते हैं और उसमें कमजोर लोग दाखिल नहीं होते कंधा देने के लिए। उसमें कंधा देना भी अपनी जुरत और शजाअत का सबूत है कि एक शजा का काजिया है तो शजा कंधा दे। और जब ये काजिया उठ करके आता है, ये भी सुबह उठ जाएगा और शाम को पहुंचेगा दफन में, फिर कहते वहां भी शियों के काजिया इसे उठते हैं, चले गए काजिया हमारे आशूरा किया था लौट आए। आशूर तो बिल्कुल ऐसे मालूम होता है कि शहादत हो रही है सबकी, मगर अहले सुन्नत का जो काजिया बुढ़ा काजिया कहलाता उठता है, एक खास नीम का पेड़ है करबला जो जहां दफन करते हैं काजिया को, वहां पहुंचने से पहले एक नीम का पेड़ है। जब काजिया आता है उससे पहले सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे होते हैं उस नीम के पेड़ पर, क्योंकि जैसे ही काजिया नीम के पेड़ के नीचे आता है नीम मीठी हो जाती है। ये आज भी होता है, आज भी कोई देखना चाहे एक पत्ती नहीं रह जाती, तबर्रुकन लोग उसकी पत्तियां निकाल लेते हैं। अगर 11 मुहर्रम को आप जाके देखें तो जैसे पतझड़ में दरख्त का जो हाल होता है वो होगा। तो ये कहना कि शिया अदाकारी करते हैं ये गलत है, मुसलमान अदाकारी करता है। अगर वो मुसलमान है और मुसलमान ही नहीं हिंदू भी अदाकारी करते, और जब ये ताजिया बरामद होता है चलता है तो इसके पीछे लोग अपनी अपने वहां तो इसके टांगे रिक्शे सभी चलते हैं, क्योंकि बड़ी सवारी तो कोई आगे तरह लेके चल नहीं सकते। जुलूस के पीछे कोई रोटी बांट रहा है, कोई खिचड़ा तकसीम कर रहा है, कोई शीरबिरन बांट रहा है, एक से एक बड़े आदमी को मैंने दौड़ते देखा है। यानी हुसैनी सरकार वो सरकार है कि जहां अमारत हो रियासत हो मगर एक रोटी के टुकड़े के लिए दौड़ता है, क्योंकि निस्बत जहरा के घर से है। सलावत दे मोहम्मद वाले वाले। आप मतवज्जे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं चाहता हूँ कि बात को आप देख लीजिए, इस्मत की रोशनी में इसीलिए इस्लाम की जरूरत है कि इस्लाम का बिल्कुल सही तारुफ होगा, किसी गलती का इम्कान नहीं रह जाएगा, हर दौर में जो खराबी या कमी होगी दूर हो जाएगी, हम मुसलमान सब मुत्तहिद हो जाएंगे। बहुत बड़ा फर्क नहीं है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे हैं, बांध के पढ़ रहे हैं, ये फिकही इख्तलाफात होते हैं। भाई हमारे मुश्तहिद ने कहा हाथ खोल के पढ़ो, तुम्हें खुद अहले सुन्नत में चार मकासिबे फिक्र है, जिसमें मालिकी सुन्नी है, इमाम मालिक के मानने वाले, वो सब हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। तो फिर मसला है उनके यहाँ हाथ खोल के पढ़ना है नमाज, इसलिए हाथ खोल के नमाज पढ़ते, जिसके यहाँ हाथ बांध के पढ़ना है वो हाथ बांध के पढ़ता है। तो फिर में तो इख्तलाफ खुद एक जगह हो सकता है, इमाम अबू हनीफा में और इमाम अबू यूसुफ में इख्तलाफ हो सकता है, इमाम अबू यूसुफ में इमाम मोहम्मद में इख्तलाफ हो सकता है। इस इख्तलाफ की कोई हैसियत नहीं है, असल में अकाइद जो हमारी है कि किसकी किसके पास इसमत है, किसकी शान क्या है, किसकी अजमत क्या है, उसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो एक इख्तलाफ यह पैदा करने की कोशिश की गई जो अकीदे को नुकसान पहुंचा सकता था, जो किताबें लिखी गई इमाम हसन और इमाम हुसैन को, कि इमाम हसन सुनो पसंद थे, देखिए उन्होंने सुनो कर ली। इमाम हुसैन के मिजाज में जरा कुछ तेजी थी, तो बताइए मासूम का मिजाज तेज होता है, नाम तो तेजी थी, जंग पसंद थे, चुना के करबला में उन्होंने जंग कर। जो कम मुताला जिनका होता है तारीख का, वो इस तरह के सवाल पैदा करते हैं, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में, और पढ़ने वाले भी समझते हैं कि हाँ ये बात तो है। बस इस रुख पर आप गौर कर ले, फिर आज के मसाइल जो आज के रुख से है वो कह के रात की रहमत तमाम करो। देखिए अगर आप सीरत रसूल से जायजा लें, क्योंकि वही हमारी दुनिया जो वही है, हमारा सोर्स वही है, पैगंबर की जिंदगी में मुख्तलिफ शेख्स हैं, बहुत से शेख्स हैं। ये बताइए रसूलुल्लाह जब तकरीबन 11-12 साल 13 साल तकरीबन मक्के में रहे, तो सुनो पसंद थे कि जंग पसंद थे? पैगंबर वहां मक्के में रहते थे, कोई लड़ाई लड़े मदाइन में गए, पत्थर मारे जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ओझड़ी डाल दी गई आपके ऊपर, अलाई गंदगी डाल दी गई, 2.5-3 साल शेबे अभी तालिब में गिरफ्तार रहे, खाने को नहीं है, छाल उबाली जा रही है, घास उबाल के पी जा रही है। अमीर मोमिनीन ने फरमाया नहीं बला में हमारे बच्चे मर गए, हमारी खाल का रंग घास का रंग हो गया, बिना जाना चाहिए, मगर कोई जंग नहीं हुई। अच्छा फिर बद्र की लड़ाई हुई, ओहद, खैबर, खंदक, ये सारी लड़ाइयां 84 के करीब, गजले और सरिये जो है इनकी दादा 84, रसूलुल्लाह जंग पसंद हो गए। तो ये भी हम लोग अपना सोचते हैं कि पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, बाद में ब्लड प्रेशर कुछ ऊंचा हो गया, जल्दी जल्दी खफा हो जाते हैं, माजल्ला माजल्ला, इन्हें पता है आदमी हमारी तरफ छोड़ी है, उनका उनका राबता तो वहां से है, जब वहां से होता जंग करो तो जंग करते हैं, वहां से होता सुनो करो तो सुनो करते हैं। बद्र में जब न तलवारें, तीन तलवार से लड़ाई लड़ी जाती है, 313 आदमी के तीन तलवारें सरकंडे के तीर बनाए हुए हैं, वो तो अगर अली जैसा बाजूसूरमा न हो तो बद्र का रंग ही उलट जाए। अरे वो 70 मक्तूल में से 35 को अकेले हजरत अली ने कत्ल कर दिया था बद्र में, यानी वो मेरी इनका डिब्यू है। हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं भाई, कभी कबीलों से लड़ते हैं, कभी डाका डालते हैं, दोनों में ताकत की जरूरत है। कुरैश को यानी ऐसे थे कि जब वो आए लड़ने के लिए बद्र में, तो रसूलुल्लाह ने अंसार में से भेजा 3 आदमियों को, जो आपको मांगे बढ़ो, तो उन्होंने क्या कहा था, हमारे बराबर वालों को भेजो, हम चरवाहों से लड़ने के लिए नहीं आए। आप बताइए जब रसूलुल्लाह जिन सिपाहियों को लाए वो उनको चरवाहा कह रहे हैं, तो हुजूर ने हमजा को, हजरत अली को और उबैदा को भेजा, और हमजा ने पूछा कि हम बराबर के, तुम बराबर के हो, तुम यानी जिनसे जंग करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्या इनसे लड़े, इनको परवरदिगार ने फतह दे दी। कितनी कमजोरी के बावजूद बद्र की लड़ाई रसूलुल्लाह लड़े, हुदैबिया में जब ताकत थी तो या सावा ग्राम चाहते थे तो हो जाए तो ठीक से काम दुरुस्त कर दिया जाए, इनका दिमाग दुरुस्त कर दिया जाए कुरैश का, समझ में नहीं आया। तो रसूलुल्लाह ने एक दबी हुई शुरू कर ली, इसका मतलब है इस्मत का मिजाज होता है कि वह ताकत और नाताकती को नहीं देखती, मकसद को देखती है। ताकत न हो तो जंग करती है, ताकत हो तो सुलो कर लेती है। हसन के पास लश्कर था, ताकत थी, सुलो कर ली। हुसैन के पास 72 से 30 हजार के मुकाबले में लश्कर थी, यही थी रज़ा रसूल। आजाए फर्ज को देखते हैं, फर्ज क्या है। अगर फर्ज का तकाजा हो कि जंग की जाए तो जंग की जाए, फर्ज का तकाजा हो सुलो की जाए तो सुलो की जाए। ऐसा मैं कहता हूँ बहुत ही जल्दी जल्दी आपको उस मंदिर तक लाने के लिए। इमाम हुसैन जंग पसंद थे, माज़ल्ला थोड़ी देर को इस हाई ऑफिसर और मफरूजे को जांच लीजिए। इमाम हसन की शहादत 50 हिजरी में हुई। कर्बला का सामू वाकया 61 का है, 10 साल का है। जब इमाम हसन इस्लाम की शहादत हो गई 50 हिजरी में और इमाम हसन जंग पसंद थे, हम आपसे पूछते हैं कि किसी के बहादुर आदमी है उसके भाई का जनाजा जा रहा हो, आप उसकी बेहतरी करके देखिए। इमाम हसन का जनाजा रोजा रसूल पर लाया जा रहा था, लोग कहते हैं दफन के लिए लाया जा रहा था, और हम कहते हैं अगर दफन के लिए भी लाया जा रहा था तो उनसे ज्यादा किसको हक था कि नाना के बदले में ले लें। किसी अखलाकी कानूनी किसी हिसाब से देख लीजिए, इमाम हसन से ज्यादा किसको हक था रसूलुल्लाह के पहलों में दफन हो। लेकिन ऐसा नहीं था, तवाफ के लिए लाया जा रहा था। हमारे आज भी कायदा है हरम में तवाफ कराया जाता है जनाजे का, दफन करने का ये तो मौका सभी के सामने आता रहता है, हम क्या कहेंगे खुदा नखास्ता, अरे कोई ना कोई मरेगा, किसी न किसी की मंजिल होगी। ये तो जब दफन की बात होती है, दफन का मसला होता है, तो बताइए कि जनाजा ले जाते कब कब सोचते, अरे कब्र पहले से तैयार होती है तब जनाजा ले जाया जाता है। तो ये कहना कि दफन के लिए ला रहे थे, क्या कब्र पहले से खुदी हुई थी? तवाफ के लिए हुक्म दिया था कि अगर कोई मुजाहिम न हो तो नाना के रोजा था, नाना के मरकज का तवाफ करा देना। मगर तीर बरसाए गए 70 तीर, जिसमें से 6-7 जिस्म में पैदस्त हो गए। इमाम हुसैन कमजोर आदमी का नाम नहीं है, अब्बास इब्न अली भी है, मुस्लिम इब्न अकील भी है, अब्दुल्लाह इब्न जाफर भी है, मोहम्मद हनफिया भी है, ये मदीना है और सबने तलवारें खींच भी ली है। ऐसे मंदिर पर इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, तीरों को फिर अपने हाथों से निकाला, कफन को दुरुस्त किया, जन्नतुल बकी में माँ के पहलू में दफन कर दिया। अगर जरा सा भी मिजाज में तेजी होती तो यही तलवारें चलती। 50 हिजरी के जंग का संग थे तो जंग क्यों नहीं की? 50 हिजरी के बाद अब देखिए जितनी जगहों पर जनाब हुजर इब्ने इदी और उनके 7 साथी कत्ल कर दिए गए। तफसीलात आप देख लीजिएगा तारीख की किताब में, बिना किसी गुनाह के। और ऐसे मुअज्जब लोग कत्ल किए गए थे कि उम्मुल मोमिनीन ने एहतजाज किया है उनके कत्ल होने पर, आलम इस्लाम में एहतजाज हुआ है। ऐसे ऐसे लोग कि बाद असहाब ने कहा पालने वाले दुआ की अब हम मर जाए रहने के काबिल ये जमाना नहीं रह गया और मर जाएंगे। इमाम हुसैन ने इब्तिदाई खत भेजा है अमीर शाम को मगर जंग नहीं की। तो आप ये बताइए कि अगर उनका मिजाज यही था नौने का कि बेहतरीन मौका था कि खड़े हो जाते और लड़ते। अच्छा चलिए और देखिए, जब वलीद ने बुलाया सर अलग हो जाएगा, मदीने मुनव्वरा में खड़े हो जाते, जंग शुरू कर देते। मदीने में इमाम की ताकत थी, जंग नहीं थी, मदीने से सफर अख्तियार कर लिया। और मदीने से सफर अख्तियार करने के बाद आप तशरीफ ले गए कहाँ? मक्के, जो हिफाजत की जगह है ताकि सुकून से रहे, लड़े नहीं। जब वहां पता चला कि कातिल हाजियों के भेस में आ गए हैं और खंजर अपने पास छिपाए हुए हैं, कत्ल करेंगे, कमजोरी की वजह से नहीं भागे थे, कोई ये ना समझे कि कमजोरी की वजह से फरार हो गए, बल्कि तकद्दुस से धर्म के लिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से कहा था मैं धर्म की जो जितनी लिमिट है जो हद है उसके एक बालिश बाहर तक होना गवारा करूंगा, एक बालिश अंदर नहीं। आप चले गए। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर जब मिली क्या कर सकते थे? जाते उनसे तुम लड़के रहेंगे, अपने भाई का इंतकाम लेकर रहेंगे, मरेंगे नहीं। हुर का लश्कर सामने आया, सब जगा हुआ, आपने अपने प्रोटेस्ट को दिखाया है कि जब उसने नजामे फरस पर हाथ डाल दिया तो आपने कहा मजाल के तुमने मेरे घोड़े की निगम निगत आपको इधर चलना होगा। अगर आप चाहते ये जिन लोगों ने सुबह से शाम तक 72 आदमियों ने भूख और प्यास में 30,000 आदमियों का मुकाबला किया हो तो ये 300 आदमियों की क्या हैसियत है इन शेर और शराब अपराध के मुकाबले में। सब कत्ल हो जाते हैं मगर उनके नाम हुसैन। आप आइए देखिए जब हमारे खेमे लग गए फुरात के किनारे और इसरार हो रहा खेमे हटा दीजिए आप, ये तो हम सब हम कह रहे हैं हटा दीजिए लीजिए, दुश्मन तो दूसरी तरह बोलता है ना, मुखालिफ तो दूसरी तरह बात करता है ना, बेअदबाना गुफ्तगू करता है। मगर इमाम ने लड़ाई नहीं लड़ी और ये बहुत से लोग सोच सकते हैं अगर कर्बला में 2 मुहर्रम को खैमों के हटाने पर लड़ाई लड़ी जाती तो तारीख लिखती पानी के ऊपर जंग हुई। हुसैन ये नहीं चाहते थे पानी पर जंग हो जाए, हुसैन ये चाहते थे दीन के लिए जंग हो जाए। खैमे हट गए जंग पसंद आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, अगर जरा सी भी मिजाज में तेजी हो, 7 मुहर्रम के पानी बंद हो गया कोई लड़ाई लड़ी गई कि पानी हम लेके रहेंगे, यही थे पानी के लिए जंग होती। 9 मुहर्रम को मैंने आपसे अर्ज किया था किसी मजलिस में कि बगैर पूछे कि भाई अब करेंगे कि नहीं, उसने कहा इनके सीने में इनके बाप का दिल है, वैसे नहीं करेंगे, हमला कर दिया, जिसमें जनाब अब्बास ने आके इमाम से कहा फौरन रसूल हमला हो गया। यानी आप यही तो कहते थे कि हम सबकत नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे, हमला हो गया। हजरत ने क्या बनवाया, एक रात की मोहलत लेना, मैं तुम पर से निसार हो जाऊंगा अब्बास, मैं तुम पर से फिदा हो जाऊं, एक रात की मोहलत ले लो। बताइए जंग पसंद आदमी एक रात, देखिए कर्बला में जिंदा रहना मुश्किल था, मर जाना आसान था। अगर हुसैन 9 मुहर्रम को लड़ते तो एक रात की भूख और एक रात की प्यास से बच जाते, मगर एक रात की ना सिर्फ उन्होंने मोहलत ली बल्कि ये वही रात है जिस रात का की याद में आप बैठे हुए हैं और पूरी रात इमाम की तस्बीह और तहलील में गुजर गई। बल्कि दुश्मन के खेमों के रावी ये कहते हैं कि हुसैन के खेमे से तस्बीह व तहलील की आवाज इस तरह हमारे कानों में आ रही थी जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से भनभनाहट की आवाज आती है। पूरी रात इबादत में गुजर गई, इतना इत्मीनान भी है, खींची हुई तलवारें, 30,000 आदमी खड़े हुसैन के इत्मीनान को मुलायदा फरमाइए उनके साथियों। सुबह आशूर आ गई, अब तो सुबह हो गई, इमाम ने अब भी जंग नहीं छेड़ने दी बल्कि आपने एक ऊंट तलब किया, ऊंट तलब करने के बाद उसका कुरान को सामने रखा। ऊंट लड़ाई की सवारी नहीं होती, लश्कर यजीद के सामने गए, उसके बाद इरशाद फरमाया जब तक तुम्हारे और हमारे दरमियान जंग नहीं होती मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमसे नसीहत करूं, और नसीहत मेरी मैं तुमको ये करता हूं कि देखो पूरे हुए जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो किसी नबी का नवासा हो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। मेरे चचा ऐसा करवा रहे तेरा ने हमला के लिए ऐसा सुना कि मेरे बाप के चचा को अल्लाह ने सैयद शहरा डाल दिया, जरा ने जाफर तैयार का हवाला दिया, मैं वो हूँ। मेरे लिए इमाम हुसैन ने एक हदीस करबला में अपने खुतबे में अपनी फजीलत में नकल की है, इतनी हदीसों में क्या मेरे और मेरे भाई के लिए नहीं कहा अल हसन व अल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जब ये कहा के और अगर उन्हें नहीं मालूम तो सहल इब्न साइदी से पूछो, सहाबा असहाब कराम के नाम लिए, ज़ैद इब्न अरकम से पूछो, अनस इब्न मालिक से पूछो, जो असहाब उस वक्त जिंदा थे उनका नाम लिया इमाम हुसैन ने, उनसे पूछो वे बताएंगे बखुदा मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तुम मेरे पत्र पर क्यों मुश्तमा हो रहा है, तो उसमें शिमर दिल जोशन ने उस मौके पर कहा है कि मैं तो अल्लाह की इबादत एक हर्फ पर करता हूँ। शिमर मलून ने कहा जनाब हबीब ने मुजाहिर ने जवाब में साफ फरमाया तू झूठा है, तू 70 हर्फों पर करता है, यानी तेरे यहाँ यकरंगी नहीं है, मेरा ये किया गया। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया ये बताओ क्या मैंने तुम में से किसी आदमी को खत्म किया है, क्या मैंने तुम्हारा कोई माल लिया है, क्या मैंने दीन पैगंबर में से किसी हलाल को हराम कर दिया है, या दीन पैगंबर के किसी हराम को हलाल कर दिया है, तुम मेरे कत्ल पर क्यों मुश्तमा हो रहे हो, क्या वजह है तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो। तो उसमें एक आदमी ने खड़े होकर के जवाब दिया हम तुम्हें तुम्हारे बाप की दुश्मनी में कत्ल करते हैं। तुम्हारे बाप की दुश्मनी में कत्ल करते हैं। तभी इमाम ने फरमाया नहीं ये बात नहीं, बात यह है कि तुम्हारे पेट में हराम गिजाएं भरी हुई है, इसलिए हक तुम पर असरअंदाज नहीं होता। किसी ने वो मोहम्मद इब्ने अशद जिसने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के साथ गद्दारी की थी, उसने कहा आप बैत क्यों नहीं कर लेते। हमने फरमाया तुम क्यों ना कहोगे, तुम्हारे लिए तो मुस्लिम का खून ही काफी है। मोहम्मद इब्ने अशद ही वो है जिसकी बहन ज्यादा दिन से अशद ने इमाम हसन को बैत दिया है, ये वो खानदान है। तो जैसा ही मोहम्मद इससे कहा, इमाम ने फरमाया बस अब यहाँ पे अहले बैत की शान नुमाया होती है। अभी तक तो लग रहा था कि बस सुनो पसंदी और वो ये कमजोरी नहीं। एक बार इमाम ने इरशाद फरमाया ना मैं कुछ दिनों की तरह तुम्हारे सामने से भागूंगा और ना गुलामों की तरह से अपने हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। ये वो फकरा है जो इमाम ने फरमाया ना मैं गुलामों की तरह से अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा कि हयत करूं और ना तुम्हारे सामने से मैं कुछ दिनों की तरह से भागूंगा। ये बात कह के इमाम वापस आए, इस तरह साथ में तीर चिल्ले कमान में जोड़, उसके बाद कहा लश्कर, ये तारीख है अकीदा नहीं है, जिन साहब को शौक हो मैं दिखा सकता हूँ तारीख की किताबों में। तीर उसने चिल्ले कमान में जोड़ा, कहा लश्कर वालों गवाह रहना पहला तीर हुसैन की तरफ मैं रिहा करता हूँ। उसके बाद कई सौ तीर आए आगाज जंग में, बताइए जारह कौन है, एग्रेसर कौन है, जालिम कौन है, सुनो पतंग कौन है, क्या इस आदमी पर हमला कर दिया जाए और वो आदमी अपना डिफेंस करे दिखा करे वो जंग पसंद होता है। इमाम ने कहा था बुझ रहा है इमाम ने, मैं वापस मदीने चला जाऊँ। अपने खुदे में इरशाद करवाया तुम नहीं जाते हो, मैं मदीने वापस चला जाऊँ। अच्छा चलो मैं सरहद पर चला जाऊँ जहाँ मुसलमान सरहदों की हिफाजत कर रहे, मैं भी एक आम मुसलमान की तरह हिफाजत करूँ। अगर ये भी नहीं चाहते हो तो मैं मुल्क छोड़ दूँ तुम्हारा। हुजूर माशाल्लाह ये मजमा तशरीफ फरमा, इमाम ने क्या कहा था, मैं हिंद चला जाऊँ। हिंद असल में सिंधी है, सिंध को अरब हिंद कहते थे, जो सिंधु होता था सिंध घाटी में रहता था वो हिंदू कहलाया। ये तो डुप्लीकेट हिंदू है उधर, असली हिंदू सिंधु थे जिनको अरबों ने हिंदू कहा और इसको हिंद कहा। अगर इमाम ने हिंद कहा तो उनकी नजर में सिंध था जहां वो आना चाहते थे, और वो इमाम ऐसा कर नहीं सकते थे कि उधर से आते तो पहले निकल जाते, हवाई जहाज नहीं था, जब गुजरते तो सिंध से गुजरते। और सादात किराम ने आपके यहाँ तो बहुत बड़ी दरगाह है, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, उनकी शख्सियत हसनी भी है हुसैनी भी है, बाप की तरफ से हसनी है माँ की तरफ से हुसैनी है, आप उनसे चाहें तो न जाने कितने फुजूल और बरकत हासिल कर सकते हैं। आखिर वो आए कि नहीं, वैसे ही हुसैन इब्ने अली आए, इससे ज्यादा सलो पसंद इंसान कौन होगा। मगर ये कि हक की का निफाज जब हो तो फिर उनको जान देने में कोई बात नहीं, यही इस्मत का सबक है जो इस्मत हमेशा देती है। जब हुसैन चले थे तब भी यही मिजाज था, रास्ते में बैठे हुए थे, एक मरतबा हल्की सी आंख लगी और चौके और चौके तो आवाज दी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही आपके मुंह से इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला, 18 साल का जवान बेटा जान के आया करीब, माँ बाप अगर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान की आयत है मगर इस वक्त आपकी जबान पर क्यों आई। मैं आंखें बंद किए हुए था, मुझे ऐसा लगा कोई कह रहा है कि ये अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अली अकबर ने कहा बाबा क्या हम हक पर नहीं है। देखिए ये सवाल ये नहीं है जो पूछ रहे, उनको मालूम नहीं था कि हक पर नहीं है। भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम मौला के चाहने वाले नहीं है तो ये नहीं कि हम जानना चाहते हैं कि है कि नहीं है, हम अपनी बात के वजन को जाहिर कर रहे हैं। क्या हम मौला के चाहने वाले नहीं है, ये उसी तरह की बात है जैसे जनाब अली अकबर ने पूछी है क्या हम हक पर नहीं है। इमाम ने फरमाया भला क्यों नहीं, हम हक पर है। जनाब अली अकबर ने कहा फिर हमें मौत का क्या डर है, फिर हमें मौत का क्या खौफ। ये उसी का पोता कह सकता है जो ये कहता हो अली को इस बात की परवाह नहीं कि मौत उस पर आती है या वो मौत पर जा पड़ता है। ये शांति अली अकबर उन वाकयात को सुनने के लिए बैठे हैं, हम बताएंगे उसकी शान क्या है। मुझे तो जनाब अली अकबर की उर्दू में इससे बेहतर तारीफ नहीं मिली जो अल्लामा नजमाबंदी ने कर दी कि अली का नाम सिंह दहरा का और सूरत पैगंबर की। अली नाम था, 18 साल का सिंह था, रसूलुल्लाह की शरीफ थे। अली का नाम सिंह दहरा का और सूरत पैगंबर की, फलक काबिल मिटाने के नथी तस्वीर अकबर की। हुसैन इब्ने अली इतना बेकरार किसी के जाने पर नहीं हुए, और इसलिए नहीं कि खाली 18 साल का जवान बेटा जा रहा था, रसूलुल्लाह की तस्वीर जा रही थी, पैगंबर की तस्वीर जा रही थी, इसलिए हुसैन बेकरार हुए। माशाल्लाह ये मजमा तशरीफ फरमा है लैला के लाल का मातम करने के लिए। आप जमा हुए हैं, आप अंदाजा करें और सोचें कि इमाम हुसैन ने ये नहीं कि अपने बच्चे को दो मरतबा किया है, जब सुबह सफे पर दुरुस्त हो रही और सफों के दुरुस्त होने के बाद जंग का आगाज होने लगा तो आपने कहा, सबसे पहले कहा, सारी दुनिया ये देख रही कि अपने बेटे को बचा रहे हैं, दूसरों को कुर्बान कर रहे हैं, ये सबसे पहले कहा अब्दुल वली, मेरे लाल आगे बढ़ो। नादी अली अकबर जैसे ही बने, नासिरान हुसैन ने तलवारें खींच ली। अरे तेरी मामूली नासिर नहीं है, हुसैन ने कहा ऐसे नासिर ना मेरे नाना के थे, ना ऐसे मेरे बाबा के थे, ना ऐसे मेरे भाई के थे, ऐसे असाब में किसी के नहीं जानता। वो अपनी जान का कहा फरजंदे रसूल, अगर आपका एक बच्चा भी जख्मी हो जाए हमारी मौजूदगी में तो हमारे लिए भाई से नंग है, हम ये गवारा कर लेंगे कि रसूल की तस्वीर मिट जाए और हम खड़े देखते रहे। बस इसलिए आप हमें इजाजत दीजिए। और कहा जाता है कि करबला में जिंदा रहना आसान नहीं था, मरना आसान था। हुसैन ये कैसे गवारा कर लेते कि अली अकबर कौसर से पहले से इराब हो जाए और हबीब प्यासे रहे, जहर प्यासे रहे। इसलिए कहा अच्छा जजाय खैर हो तुम लोगों को, नासिरों ने जिहाद किया, नमाज जहर का वक्त हो गया, नासिरों की तादाद घटती चली गई। जब अजीजों की बारी आई तो फिर इमाम ने कहा भतीजों को भेजने से पहले, भांजों को भेजने से पहले, भाई को भेजने से पहले, लाल आगे बढ़ो, तो तुम्हारे को भरोसा है ना मेरे लाल अली अकबर आगे बढ़ो। जैसे ही जनाब अली अकबर से कहा आगे बढ़ो, जोश शजात में आगे बढ़े। अब अजीजों ने भी, कासिम ने और मोहम्मद ने, जनाब अब्बास के बेटे ने, जनाब अब्बास ने, उनके भाइयों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आका, क्या हमारे लिए ये बाइस शर्म नहीं होगा कि हम मौजूद थे और अली अकबर शहीद हो गए। इमाम ने फिर अली अकबर को रोक दिया, एक एक नासिर जाता रहा, यहां तक कि ये आलम हुआ कि हुसैन रह गए और अली अकबर, शहादत अब्बास भी हो गई, आलम भी खेमे में आ गया, बीबियों ने मातम भी कर लिया। पर जब अब अली अकबर के जाने की बात हुई तो बाबा ने भाई अपने हुसैन कहते थे तुम अली अकबर न जाओ, मैं जा रहा हूँ। अब बाबा कितने शर्म की बात है कि जवान बेटा खड़ा देखता रहे और बूढ़ा बाप कुर्बान हो, मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ। उधर दुश्मन कह रहा था हुसैन कोई हो तो ले जाओ, अब इससे कम सिपाही जाओगी कि सरदार लश्कर खड़ा हो उसका बेटा कोई और मौजूद नहीं। अंदाजा नहीं किया जा सकता कि हुसैन की बेबसी क्या थी। इरशाद फरमाया मेरे लाल अच्छा जा रहे हो तो खेमे के अंदर जाओ। अब्बास को खेमे में भेजा है मशकीदा लेने के लिए, अली अकबर को खेमे में भेजा है रुख्सत होने के लिए। अली अकबर गए रुख्सत होने के लिए, अब वो मनाजिर कौन बता सकता है कि क्या हुआ, जैनब से कैसे रुख्सत हुए, अपनी माँ लैला से कैसे रुख्सत हुए, अपनी बहन फातिमा सुबरा से कैसे रुख्सत हुए, सकीना को कैसे समझाया, कोई नहीं बता सकता। बस हमीद इब्ने मुस्लिम की रिवायत है कि वो कहता है जब अली अकबर गए तो मैंने अजीब मंजर देखा, खाने का पर्दा उठता है, अली अकबर निकलना चाहते हैं, उसके बाद पर्दा फिर गिर जाता है। कहता छह बार ऐसा ही हुआ, छह मरतबा खाने का पर्दा उठा और छह मरतबा खाने का पर्दा गिरा। खुद कहता है हमीद इब्ने मुस्लिम कि मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है अली अकबर समझा बुझा के बीबियों को निकलना चाहते हैं और बीबियां फिर अपने हल्के में लेके अली अकबर को अंदर चली जाती है। बार बार यही हुआ, छह बार के बाद जब अली अकबर बाहर आए तो हुसैन ने ऐसे नहीं जाने दिया, अपने नाना रसूलुल्लाह की कबा पहनाई, अपने नाना रसूलुल्लाह का अमामा सर पर रखा, घोड़ा जिसका नाम औकाफ था ऊपर दिखलाया, घोड़ा अपने नाना अल्लाह के रसूल की पूरी तस्वीर बना दी कि ये जा रहा है मैदान मक्कल में, पूरी तस्वीर बना दी। और अब इस तस्वीर बनाने के बाद अभी अब्बास गए तो अल्लाह को गवाह नहीं किया, नासिर गए तो अल्लाह को नहीं गवाह किया, अमामा हाथों में लेके कहा पालने वाले तू गवाह रहना, मैं उसको भेज रहा हूं जो सूरत में और सीरत में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबे, और जब मैं तेरे रसूल की जियारत का मुश्ताक होता था तो इस लाल की जियारत करता था। ये जालिम कौन जो है इसके सामने मैं भेज रहा हूं। जनाब अली अकबर घोड़े पर बैठे सुबह से देर
کر رہے ہیں. اب موقع جہاد ملا تو تیری سے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا, مگر ایک دم سے احساس ہوا کوئی بے تابانہ دوڑ رہا ہے. اندازہ کرے ہمیں ارشاد فرمائی ہے, بہت بڑی بات ہے. امام حسین سے کسی نے عام جنوں میں زندگی میں پوچھا ہے سرزند رسول انسان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے, کہا جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کا جوان بیٹا اس کے آگے چلے, اسے اپنی جوانی اپنے جوان بیٹے میں نظر آتی. میں پوچھتا ہوں سرزند رسول اس وقت بھی خوشی ہو رہی ہے جب جوان بیٹا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور سب کا مطلب کا بوڑھا ہوا ہے, کتنے چلنے اور کھانا کھائے ہوئے کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑے. ایک مرتبہ دلال علی اکبر نے روک کر کے بابا آپ نے اجازت دے دی تھی, اجازت دے دی تھی پیچھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا دینا میرے لال تم نہیں سمجھ سکتے ہو. اچھا ایسا کرنا جب تک سامنا رہے میرے لیے دیکھتے رہنا, میری طرف منہ بول کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میدان قتال میں آ گئے امام علی مقام بلندی پر اور دیکھ رہے ہیں جہاد, میں میدان مقتل کو نہیں دیکھ رہی امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. جناب علی اکبر نے دوڑنا شروع کیا, ایک بار امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ماں نے آواز دی, اے آقا کیا میرے بچے کی خیر تو ہے, میرے علی اکبر کی خیر تو ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہاں لیلا, مگر ایک نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے سامنے آ گیا ہے, میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے, یہ پہلوان سیر و سہراب ہے, میں نہیں چاہتا کہ انقلابی جنگ میں علی اکبر شکست کھا جائے. میرے نانا کی حدیث ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, جاؤ خیمے میں دعا کرو. اداکارانے علی اکبر اداکارانے امام مظلوم, یہ شب عاشور ہے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. یہ چاند منٹ جو ہم لوگ مصائب علی اکبر سنیں گے, خدا ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے, پروردگار عالم ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو علی اکبر کے صدقے میں برقرار رکھے. ارباب کرم میں آپ سے اس موقع پر ایک دعا بھی چاہتا ہوں, آپ یہ دعا فرمائیں. امریکہ میں ایک جوان جناب جواد الحسن بہت علیل ہے, انہیں وائرل ہوا ہے, زندگی لے کر پڑے ماتم کرنے کے بعد گئے تھے بیمار ہو گئے ہیں. آپ دعا دیجئے کہ صدقہ علی اکبر میں اللہ انہیں صحت دے دے. اندازہ کیجیے ڈھائی بجے رات کو لائٹ سے ان کی ماں جا رہی ہے, جوان اگر اسپتال میں بھی لیتا ہو تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے, جس کا جوان تلواروں میں گھرا ہوا ہو, بستیوں میں گھرا ہوا ہو, میدے چاروں طرف سے چل رہے ہو, اس لیلا کے دل سے پوچھئے. امام نے کہا لیلا خیمے میں واپس جاؤ, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. جناب لیلا واپس آئیں, اے زینب آؤ, ام کلثوم آؤ, میں اپنے علی اکبر کے لیے دعا کروں گی, تم آمین کہنا. کتنا اچھا موقع تھا, کہہ سکتی تھی میرا لال بچ جائے, میرے لال کو کوئی گزند نہ پہنچے, مگر دعا دی تھی اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے میرے یوسف کو پلٹا دے, یوسف واپس آ جائے. یہ ماں کی دعا کا اثر تھا. ابھی میں چند منٹ ضرور آپ کے سامنے مسائل پڑھوں گا, یہ ماں کی دعا تھی جس کا جس کی وجہ سے جناب علی اکبر واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد کہا بابا نرانی آہن نے مار ڈالا, اگر ایک جرے آپ مل جاتا ہے, ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو ہاتھ وہ جنگ کر کے دکھاتا کہ رہتی دنیا تک یادگار رہتی. امام نے کہا میرے لال پانی کہاں؟ اچھا ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے ارشاد فرمایا, اے بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں. امام نے اپنی انگشتری اتاری حفیظ کی اور علی اکبر کے دہن میں دی, میرے لال سے رکھ لو کچھ تسکین ہوگی, جاؤ تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. بھائی یہ سننا تھا, پھر گھوڑے پر بیٹھے, پھر میدان مقتل میں آئے, جس سب میں جاتے تھے الٹ کے چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ اس حسین ابن نمیر کہتا ہے کہ میں نے طے کر لیا اور کہا اگر یہ جوان اب کی میری طرف سے گزرا تو میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں پٹھلا دوں گا. بہت جناب علی اکبر جوش شجاعت میں جا رہے تھے, اس نے پیچھے سے وار کیا, बरछी का वार था, वार लगना था कि जनाब अली अकबर ने घोड़े की आयाल से पकड़ लिया। अब घोड़ा जिधर जिधर जाता था तलवारों के वार हो रहे थे। अरबाब कराम गौर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हर नासिर ने बावजूद शजाअत के हुसैन को पुकारा है मदद के लिए, मगर ना अब्बास ने पुकारा, इसलिए कसमा दांतों में दबा हुआ था आखिर, और ना अली अकबर ने पुकारा क्योंकि बूढ़े बाप को देख चुके थे कि इतना प्यासा है। जवान बेटे की शजाअत के खिलाफ था कि अपने बाप को आवाज दे, मगर ये इत्तला भी देना जरूरी थी कि मैंने कुर्बानी पेश कर दी। उस हालत में जब बर्छी का फल लगा है, जख्मों से चूर है, मगर जहानत और शजाअत जनाब अली अकबर है, अगर सलाम करते कि अस्सलाम वालेकुम या बाप बिल्ला, तो हम इमाम हुसैन को जवाब सलाम वाजिब हो जाता। जनाब अली अकबर ने सलाम उलट दिया, या बता अलैकुम सलाम, ए बाबा मेरे पास मेरा सलाम है आखिर आप करो, जवाब दे दीजिएगा, जवाब देने की जरूरत नहीं। मगर बाब करम गोया अली अकबर कह रहे थे आने की जरूरत नहीं, मगर हुसैन क्या करते, हुसैन ने पहले तो मर लिया पड़ा, या सुनैया अलग दुनिया बालक अलफा, ए मेरे बेटे तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक है, उसके बाद छोड़े मक्सल की तरफ। रिवायत में एक शेर जैसे अंधा हो जाता है, दौड़ते थे और उसके बाद आवाज देते थे याली याली, ये भी नहीं समझ में आता कि अली अकबर को पुकारते थे कि आवाज दो, या नजफ से बाबा को पुकारते थे कि बाबा वास्ते मदद है आइए, नहीं मालूम कैसे पहुंचे कौन बताए, कैसे जनाब अली अकबर तक पहुंचे कोई नहीं बता सकता। भाई इतना मिलता शेख हुर्र आमिरी बुजुर्ग आलिम बयान करते हैं, लड़खड़ाते हुए हुसैन आए, मगर अली अकबर के जिस्म से फरमाते पांच कदम या सात कदम रह गए थे तो खड़े नहीं चल सके, जैसे एक बच्चा भिसक के कोहनियों के पल चलता है, वैसे हुसैन खिसकते हुए अली अकबर तक आए। और आवाज दी मेरे लाल किस आलम में हो, जनाब अली अकबर ने चार फरमाया बाबा बाबा मेरा आलम आप पूछ रहे हैं, अरे ये मेरे नाना खड़े मुस्तुल्ला, ये मेरे दादा अली मुर्तजा खड़े हैं, उनके हाथों में दो जाम है, कहते एक तेरे लिए है एक मेरे काफे हुसैन के लिए है, ये जनाब फातिमा खड़ी है मेरी दादी, ये मेरे चचा हसन खड़े, आपके आने से पंजतन हो गए, बोला तस्कीन दे रहे थे हुसैन को। हुसैन ने मरतबा आवाज दी, बेटा ये बताओ ये बार बार पीने पर हाथ क्यों रख रहे हो, हाथ क्यों रख रहे हो, फरमाते हैं बाबा मच्छी का फल पीने में टूट गया, बहुत तकलीफ दे रहा, अगर आप इसे निकाल दें तो मैं कहता हूँ शजाअत हुसैन एक मरतबा सीन उल्टी, घुटनों को मोड़ा बैठे, हाथ सीने अली अकबर में रखा और उधर कहते ही बर्छी का फल निकाला, कलेजा बाहर आ गया, अंतरी से बर्बाद कर गई। मगर अभी भी बाब शजाअत खत्म नहीं हुआ, मैं कहता हूँ हुसैन आवाज दीजिए अब्बास को तराई से के आए, आवाज दीजिए नासिरों को आए, जवान का लाशा उठाना है, मगर नहीं, इमाम ने फैसल हनक भी गांधी बेटे के अपनी कमर कसी, जवान का लाशा 18 साल के जवान का लाशा उठाया और उसके बाद खैमे की तरफ चले, मगर रावी बात बयान करता है चंद कदम चलते थे लाशा रख देते थे, थोड़े चंद कदम उठाते